प्रिय श्रोता नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हैं और हमें विश्वास है कि आप सब आज का कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से श्रेष्ठ गीत नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है प्रेम। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी आज अपने सपरिवार के साथ कुशल पूर्वक हैं और फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से श्रेष्ठ गीत नामक पुस्तक का अध्ययन आरंभ कर दिए हैं। पिछले अध्ययन में हम इसके परिचय को देख रहे थे और आज भी हम इस पुस्तक के परिचय को ही देखेंगे, ताकि इस पुस्तक के उस पृष्ठभूमि को देखकर समझ सकें कि हम इसमें से किन बातों को सीखने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे सामर्थ्य और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से एक बार दिया है, ताकि प्रभु हम आपके जीवित वचन का अध्ययन फिर से रेडियो के माध्यम से कर सकें। इस समय हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके अपने प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए जो आपके वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक से हम अध्ययन आरंभ करते हैं। प्रार्थना है कि हर एक को आप अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि एक एक श्रोता भाई बहन इस पुस्तक की उन बातों को समझ सके, जान सके और अपने जीवन में लागू कर सके। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है, उन माता पिताओं के लिए भी है जो बीमार अवस्था में हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं या किसी प्रकार के दबाव और तनाव में हैं। पिताजी, आप उन्हें शांति प्रदान कीजिए। यदि किसी परिवार में फूट है, ईर्ष्या है, आप उनका भी समाधान करें। आज अपने वचन के द्वारा से हम सब से बोले और बातचीत करें। संसार के हर एक बुराइयों से, बुरी चिंताओं से आप सबकी रक्षा करें। धन्यवाद देते हैं पिताजी हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम श्रेष्ठ गीत नामक पुस्तक का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं, और पिछले अध्ययन में हमने इस बात को देखा कि हमें इस पुस्तक को जानने के लिए अति आवश्यक है कि कुछ मुख्य बातों को हम समझें। अलग अलग विचारवाद और अलग अलग प्रकार के लोग इस पुस्तक को गलत तरीके से प्रयोग में लेते हैं, लेकिन आज हम इस पुस्तक के परिचय में थोड़ा आगे बढ़ते हुए देखने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर की संतान जो इस पुस्तक में मसीह यीशु और कलीसिया के अद्भुत संबंध को देखता है, उसके लिए ऐसी व्याख्या स्वीकार्य नहीं होती है, विशेष करके रदरफोर्ड, चेने और मूडी जैसों के लिए। यह एक अत्यधिक मनभावन पुस्तक थी। उन्होंने अगवा करने की यह कहानी स्वीकार नहीं की, और न ही डॉक्टर हेरी आयरनसाइट ने। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि कुछ लोगों का मानना यह था कि सुलेमान ने एक सुनेमाइन लड़की को अगवा किया जबकि वो जाना नहीं चाहती थी। इसके विरोध में कुछ लोगों का कहना है कि यह कहानी गलत बताई गई है, और इसीलिए डॉक्टर हेरी और आयरनसाइड इससे स्वीकार नहीं करते। अतः उन्होंने घुटनों पर गिरकर परमेश्वर से इसकी व्याख्या मांगी, इस पुस्तक को समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान मांगी। आज मैं आपको इसकी जो व्याख्या दे रहा हूं वह अधिकतर डॉक्टर आयरनसाइड की व्याख्या है। मेरे मित्रों, नाटक की पृष्ठभूमि यरूशलेम नगर है और कुछ दृश्य पूर्व काल के हैं। यह यूनानी नाटक के समान है जिसमें एक गायन मंडली मुख्य अभिनेता से प्रश्नोत्तर करती है। यरूशलेम की पुत्रियां कहानी की ताल लय को बढ़ाती है। ये वार्तालाप गायन रूप में प्रस्तुत किया गया है। अनेक मनोहर दृश्य यरूशलेम के हैं जिनका दूसरा रूप कलीसिया है। तो आइए हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे श्रेष्ठ गीत की पुस्तक एक अध्याय उसके 6 पद में देखते हैं कि सुनेमी लड़की कहती है, मुझे इसलिए न घूर कि मैं सांवली हूं, क्योंकि रूप से झुलस गई। मेरी माता के पुत्र मुझसे अप्रसन्न थे, उन्होंने मुझको दाख की बारियों की रखवालिन बनाया, परंतु मैंने अपने निज दाख की बारी की रखवाली नहीं की। उसे दाख की बारी की रखवाली करने के लिए बाध्य किया गया, अतः वह धूप से झुलस गई। ऐसा प्रतीत होता है कि यह परिवार एप्रेम का निवासी था। वे किराए के किसान थे, हम उन्हें छटनी करने वाले कह सकते हैं। यह अंतिम अध्याय 8:1 से स्पष्ट होता है कि भला होता कि तू मेरे भाई के समान होता जिसने मेरी माता की छातियों से दूध पिया, तब मैं तुझे बाहर पाकर तेरा चुंबन लेती और कोई मेरी निंदा ना करता। मेरे विचार में यह पहला दृश्य है, वह लड़की झुलसी हुई है और उसे अपना अपमान प्रतीत होता है। उस युग में धूप से जलने का अर्थ था आप परिश्रमी जन हैं। राजमहल की स्त्रियां अपनी त्वचा को दमकता हुआ रखती थी। वह धूप से जली ही नहीं थी, वह अपनी दाग की बारी की देखभाल भी नहीं कर पाई थी। वह वास्तव में सुंदर थी, परंतु वह अपना सौंदर्यकरण नहीं कर पाई थी। वह परिश्रमी लड़की थी, अतः उसे भेड़ों की रखवाली के लिए रखा गया था। 1:8 में हम पढ़ते हैं, हे स्त्रियों मैं सुंदरी, यदि तू यह ना जानती हो तो भेड़ बकरियों के खुरों पर चल और चरवाहों के तंबुओं के पास अपनी बकरियों के बच्चों को चरा। उसे दाख की बारी के साथ साथ भेड़ों को भी चरानी थी। उसका स्थान पर्वतीय स्थान से गुजरने वाले कारवाओं का मार्ग था। मैंने अपने मित्र के द्वारा से इस बात को जाना है कि वह स्थान बहुत ऊंचा नीचा है और इससे नाटक का दृश्य समझ में आ सकता है। वह वहां से यरूशलेम और दमिश्क के मध्य आने जाने वाले कारवां देखा करती थी। अध्याय 3 उसके 6 पद में उसकी प्रतिक्रिया इसे प्रकट करती है। यह क्या है जो धुएं के खंभे के समान गंधरस और लोबान से सुगंधित और व्यापारी की सब भांति की बुकनी बुकनी लगाए हुए जंगल से निकला आता है। कारवाओं में जो स्त्रियां थी वे सजी धजी थी और छतरियों के नीचे धूप से सुरक्षित रहती थी और मणियों से लदी रहती थी। वह स्वप्न में अपने आप को उनके स्थान में देखती थी। उसे कारवाओं से उठती गंधरस आदि की सुगंध आती थी। यह प्रभु यीशु के जन्म और मृत्यु का अद्भुत चित्रण है। उन्होंने उसे जन्म पर मूर दिया था और उसकी मृत्यु पर उसकी पार्थिव देह पर मूर लगाया था। यहाँ अद्भुत आत्मिक उपमाएं हैं, हमें मसीह के निकट लाने वाले सत्य हैं। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि बकरियां चराते चराते एक दिन उसे एक रूपवान चरवाहा मिला और उसे इस लड़की से प्रेम हो गया। मैं आगे बढ़कर आपको बताना चाहता हूं कि यह मसीह का और कलीसिया का चित्रण है। वह चरवाहा उसकी प्रशंसा में कहता है, 2 अध्याय उसके 2 पद में, जैसे सोसन फूल कटीले पेड़ों के बीच वैसे ही मेरी प्रिय युवतियों के बीच में है। और फिर वह कहता है 4 अध्याय के 1 पद में, हे मेरी प्रिय तू सुंदर है, तू सुंदर है और तेरी आंखें तेरी लटों के बीच में कबूतरों की सी दिखाई देती है। तेरे बाल उन बकरियों के झुंड के समान है जो गिलाद पहाड़ के ढाल पर लेटी हुई हो। यह अति सुंदर काव्य भाषा है। यह कलीसिया के लिए मसीह के प्रेम का चित्रण है। प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से इतना प्रेम किया कि अपने आप को उसके लिए दे दिया। अंत में उसने उस चरवाहे को अपना दिल दे दिया। 2 अध्याय के 3 पद में हम पढ़ते हैं, जैसे सेब का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। स्मरण रखें कि प्रेम शब्द वधु का प्रतीक है और प्रिय शब्द वर का प्रतीक है। प्रभु यीशु ने हमें निमंत्रण दिया है, मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 28 पद में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या आप जानते हैं कि मसीह में विश्राम पाने का अर्थ क्या है? क्या आप उसमें विश्राम पाते हैं? यह संबंध आपके लिए कैसा अद्भुत हो सकता है? मैं धर्म और संस्था के विषय में नहीं कह रहा हूं, वरन मसीह यीशु के साथ प्रेमपूर्ण संबंधों की चर्चा कर रहा हूं। उस चरवाहे को अपना दिल दे देने के बाद वे एक दूसरे के प्रेम में पागल हो गए थे। विवाहित प्रेम के सदृश अन्य कुछ भी नहीं जैसा उन्होंने अनुभव किया। श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय के 16 में लिखा है, मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूँ। वह अपनी भेड़ बकरियां सोसन के फूलों के बीच में चराता है। यह कैसी अद्भुत बात है! उनमें एक अद्भुत व्यक्तिगत संबंध था। वह उसे एक दिन भोजन के लिए ले गया। वह तो सोचती थी कि वह मात्र एक चरवाहा है, परंतु वह एक माननीय जन भी था। 2 अध्याय के 4 पद में लिखा है, वह मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम था। वह एक विचित्र चरवाहा था। उसके पास भेड़े नहीं थी। उसने पूछा, 1 अध्याय के 7 पद में लिखा है, हे मेरे प्राण प्रिय मुझे बता तू अपने भेड़ बकरियां कहाँ चराता है, दोपहर को तू उन्हें कहाँ बैठाता है। एक दिन उसने कहा कि वह जा रहा है। परंतु लौट कर आएगा। यह यीशु के शब्द हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 1-3 पद में हम पढ़ते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मेरे मित्रों, प्रतीक्षा में कई दिन बीत गए। उसके परिवार के लोग और उसकी सहेलियां उसका ठट्ठा करने लगे, तू एक सीधी सादी गांव की लड़की है, उसने तुझे मूर्ख बनाया। ठीक यही बात पत्रस ने कही कि हमारे युग में होगा। दूसरा पत्रस की पत्री 3:3-4 पद में लिखा है, पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। परंतु उस पर भरोसा था, वह उस पर विश्वास रखती थी, वह उसके स्वप्न देखती थी। 3:1 में हम पढ़ते हैं, रात के समय मैं अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती रही, मैं उसे ढूंढती तो रही परंतु उसे न पाया। अब मैं आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या आप मसीह यीशु को ढूंढते हैं? क्या आप उसके लिए तरसते हैं? एक दिन रात में जब वह अपने पलंग पर लेटी, उसकी यादों में खोई हुई थी कि उसे अपने कमरे में सुगंध उठती सी प्रतीत हुई। उस युग की रीति थी कि प्रेमी दरवाजे पर सुगंध करे। उसने उठकर देखा, 5:5 में लिखा है, मैं अपने प्रेमी के लिए द्वार खोलने को उठी और मेरे हाथों से गंधरस टपका और मेरी उंगलियों पर से टपकता हुआ गंधरस बेंदे की मुठों पर था। उसे विश्वास था कि वह एक दिन आएगा, वह उसे भूला नहीं है। आज हमारे जीवन में क्या मसीह की सुगंध के प्रमाण हैं? ओह मेरे मित्रों, धार्मिक ढोंग से तृप्त न हो जाएं, क्यों ना व्यवहारिकता की गहराई तक हम जाएं? अब तक मसीह आपके लिए क्या अर्थ रखता है? क्या आज आपके जीवन में मसीह की सुगंध है? वह जानती थी कि उसका प्रेमी निकट है। मत्ती रचित सुसमाचार 28:20 में प्रभु यीशु ने कहा, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। पौलुस जब जेल में था तब वह कह सकता था कि प्रभु यीशु उसके साथ है। इब्रानियों की पत्री 13:5 में उसकी प्रतिज्ञा लिखी है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। मेरे मित्रों, एक दिन वह अपनी दाख की बारी में काम कर रही थी, तब हम पढ़ते हैं कि 2:15 में, जो छोटी लोमड़िया दाख की बारियां बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारी में फूल लगे हैं। वहां पर वे धरती पर ही दाखलता को फैलने देते हैं, वह उन्हें उठाकर ऊपर कर रही है कि लोमड़िया उन्हें हानि न पहुंचाए। इसी बीच उसने मार्ग पर धुआं उठता हुआ देखा। 3:6 में लिखा है, यह क्या है जो धुएं के खंभे के समान गंधरस और लोबान से सुगंधित और व्यापारी की सब भांति की बुकनी लगाए हुए जंगल से निकला आता है। लोग नारे लगा रहे थे, देखो राजा सुलेमान आता है। वह तो अपने काम में व्यस्त है और नहीं जानती कि यह राजा सुलेमान कौन है। तभी किसी ने आकर उससे कहा, देख राजा सुलेमान ने तुझे बुलवाया है। मुझे बुलवाया? मैं तो उसे जानती भी नहीं, वह मुझे क्यों बुलवाएगा? 2:8-10 में पढ़ते हैं, मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है। देखो, वह पहाड़ों पर कूदता और पहाड़ियों को फांदता हुआ आता है। मेरा प्रेमी चिकारे या जवान हरिणी के समान है। देखो, वह हमारी दीवार के पीछे खड़ा है और खिड़कियों की ओर ताक रहा है और झंझरी में से देख रहा है। मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है, हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चली आ। अतः वह सुलेमान के पास लाई गई। वह उसका चरवाहा है जो उसके पास आया है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने प्रतिज्ञा की है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 27 और 28 पद में, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। पौलुस भी कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय उसके 16 और 17 पद में, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। प्रभु यीशु ने प्रतिज्ञा की है कि वह हमारे लिए फिर से आएगा। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक 2 अध्याय उसके 11 से 13 पद में हम देखते हैं, क्योंकि देख जाड़ा जाता रहा, वर्षा भी हो चुकी और जाती रही, पृथ्वी पर फूल दिखाई देते हैं, चिड़ियों के गाने का समय आ पहुंचा है और हमारे देश में पिंडुक का शब्द सुनाई देता है, अंजीर पकने लगे हैं और दाखलताएं फूल रही हैं, वे सुगंध दे रही हैं, हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चली आ। एक दिन वह हमें इस संसार से ले जाएगा। प्रसंगवश आप इस संसार में कितना उलझे हुए हैं, यदि वह हमें इस संसार से ले जाने आएगा तो क्या हमें दुख होगा? कुछ लोग इस संसार में, इस समृद्ध समाज में ऐसे रम गए हैं कि जब प्रभु यीशु उन्हें लेने के लिए आएगा तो वे रोते हुए उसके साथ जाएंगे। वह अपनी वधु से कहता है, 2 अध्याय उसके 13 और 14 पद में, अंजीर पकने लगे हैं और दाखलताएं फूल रही हैं, वे सुगंध दे रही हैं, हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चली आ। हे मेरी कबूतरी, पहाड़ की दरारों में और टीलों के कुंज में मुझे अपना मुख देखने दे, मुझे अपना बोल सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। कैसी महामय अभिव्यक्ति है। 2 अध्याय उसके 4 पद में हम पढ़ते हैं, वह मुझे भोज के घर ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम था। उधार प्रेमालाप है, हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। इस पुस्तक में यही एक छोटी सी कहानी है जो प्रभु और कलीसिया के बीच की कहानी है। मेरे मित्रों, मैं समझता हूं कि इस कहानी के द्वारा से और इस पुस्तक के अध्ययन के द्वारा से हम निश्चय ही परमेश्वर और कलीसिया के बीच के प्रेम की बातों को समझ पाएंगे और मैं आशा करता हूं कि आप इस अध्ययन में अवश्य ही रुचि रखेंगे। आज हमारे अध्ययन का समय यहां पर समाप्त होता है और मुझे आशा ही नहीं परंतु पूर्ण विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आप अवश्य ही परमेश्वर के उस महान प्रेम को समझने पाएंगे अपने व्यक्तिगत जीवन में और कलीसिया के जीवन में। तो मित्रों, आप इस अध्ययन में अवश्य ही भागी बने रहें ताकि इसके द्वारा और भी हम आत्मिक आशीषों को प्राप्त कर सकें। इस अध्ययन के द्वारा प्रभु आप सबको निरंतर अपनी आशीषें देता रहे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
वंदे प्रभु, वंदे मसीह, शात शात वंदना, वंदे प्रभु, वंदे प्रभु, शुभ दिन हम अपने को चरणों